خاص عزت اور احترام دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی ماہ ذی‌الحج کی اہمیت تھی کافروں کے نزدیک، اور اسلام کے جو مبارک مہینے ہیں ان میں سے ایک ذی‌الحج کا مہینہ ہے۔ اس ذی‌الحج کے مہینے کی ہماری اپنے مومنین ہونے کے ناطے کچھ ایسی یادیں وابستہ ہیں کہ اس مہینے کی برکت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو اس بات سے لگائیں کہ اس ابتدا امیر المومنین اور شہزادی کونین کی آپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یعنی پہلی ذی‌الحج، اور اس مہینے کا اختتام چوتھی ذی‌الحج یعنی عید مباحدہ پر ہو رہا ہے، اس کو بھی پنجتن پورے کے پورے شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 18 ذی‌الحج اور عرفے کا دن اور باقی مختلف مناسبتیں جو اس مہینے میں ہیں، اس کے اعتبار سے مومنین کی توجہ کا مرکز اور زیادہ بن جانا چاہیے۔ لیکن ہماری گفتگو جو آج ہو رہی ہے وہ ذی‌الحج کے مہینے میں عید قربان کے حوالے سے ہو رہی ہے، کیا ہے خدا کو پیغام اس عید کے ذریعے سے کیا دینا ہے، اور کچھ عرفے کے اعمال عرفے کے اعتبار سے گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد تھوڑے سے احکام جو ہیں وہ قربانی کے حوالے سے بیان ہوں گے، کیونکہ عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، اور ہر گھر میں ہر تقریباً محلے میں آپ جگہ جگہ جانور آپ دیکھتے رہے آنے شروع ہو گئے، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہو جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے اس عید الاضحیٰ، عید قربان جو مناتے ہیں، بلکہ تمام مسلمان جو تقریبوں میں جو مناتے ہیں، یہ قصہ جو ہے باپ ماں اور ایک بیٹے کی کہانی ہے کہ جو رسول اللہ کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے جو ہے وہ کئی سو سال پہلے جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن کا قرآن میں بہت تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان کا لقب یہ ہے کہ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا، حضرت ابراہیم علیہ نبی اللہ کا لقب ہے کلیم اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ جب لفظ دوست ذہن میں آتا ہے تو خود آپ سب لوگ بھی ہم انسان جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، تو तो खुद ब खुद जहन में बात आती है कि हमेशा इंसान अपने दोस्तों के जरिए से पहचाना जाता है। इस तरह माँ बाप अपने बच्चे की बुरी आदत देख के फौरन सवाल करते हैं, बेटा आजकल तुम कहाँ बैठे हो, किससे तुम्हारी दोस्ती है। या स्कूल का बच्चा जो है वो घर आके कोई गंदी बात कर दे, गाली दे दे, तो माँ बाप कहते हैं कि यकीन तुम स्कूल में उन बच्चों के साथ बैठे के जो गंदे बच्चे हैं। तो ये बच्चे ने आके बताया नहीं, लेकिन कैसे पता चल गया, इसके उठने, इसके बैठने, इसके बात करने, इसके चलने से पता चल गया कि बच्चा एक अलग जगह बैठा है। तो दोस्ती का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है दोस्त के ऊपर। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती रखो, अच्छे लोगों से ताल्लुकात रखो, ताकि उनके असर तुम्हारे ऊपर पड़े। तो अल्लाह जब दोस्त बना रहा है इब्राहिम को, तो अल्लाह ने इब्राहिम के अंदर वो क्वालिटी देखी होगी, वो चीज़ें देखी होंगी कि जो अल्लाह को पसंद होगी या अल्लाह के अंदर होंगी। क्योंकि इंसान दोस्ती करता है, आजकल फिर दोस्ती के मायारत बदल गए हैं ना। कभी हमारी दोस्ती होती किसी से पैसे की वजह से, कभी हमारी दोस्ती किसी से होती दौलत की वजह से, कभी हमारी दोस्ती होती जैसे ये बच्चियाँ बैठी हैं ईमान की वजह से। ये बच्चियाँ ये दर्द सुनने वाले लोगों का मिजाज बन जाता है कि मोमिन से दोस्ती करनी है, दीनदार से दोस्ती करनी है। तो दोस्ती के मायारत होते हैं। तो अल्लाह जब किसी से दोस्ती करेगा तो अल्लाह का मायार ये तो नहीं है कि वो पैसे वाला है तो ठीक है मैं दोस्त बनाता हूँ। अल्लाह का मैार ना पैसा है, ना दौलत है, ना शोहरत है। तो अल्लाह का मैार क्या था कि अल्लाह जैसी शख्सियत, यानी अल्लाह जैसी वजूद, और वो इब्राहिम को अपना दोस्त बनाए। तो यकीनन इब्राहिम के अंदर वो खुशियात रही होंगी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। हजरत इब्राहिम की खुशियत क्या है? हजरत इब्राहिम की खुशियत ये है, बहुत सारी उनके औसाफ किताबों में जिक्र है, जिसमें से एक जिक्र ये है कि वो कभी तन्हा खाना नहीं खाते थे। हमेशा जो है वो जब तक कोई मेहमान साथ ना हो खाना नहीं खाते थे, और अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। एक मरतबा किसी को अपने घर खाने के लिए बुलाया और उससे पूछा कि देर रब कौन है, तो उसने कहा कि मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ। तो इब्राहिम ने उसको अपने घर से निकाल दिया। तो परवरदिगार आलम में अच्छे दोस्त की सिफत ये होती है कि अगर अपने दोस्त में कोई बुराई देखे तो हमेशा उसको बता दें। बुराई छुपाने का मतलब नहीं कि आप दोस्ती का हम पता नहीं कर रहे, बल्कि दोस्त से दुश्मनी कर रहे हैं। जब इब्राहिम ने उस काफिर को अपने यहाँ से भगा दिया और खाना नहीं खिलाया, तो अल्लाह ने अपने फरिश्ते को भेजा और कहा कि ए इब्राहिम, तुमने उस आदमी को क्यों भगा दिया जिसको तुमने अपने मेहमान बुलाया था खाने पर? कहा कि ए अल्लाह, वो तेरी बात नहीं करता, वो बुतों की पूजा करता है, और मैं उसको कैसे खाना खिलाती हूँ कि जो मेरे रब को न माने और तेरी तौहीद का इकरार न करे। तो अल्लाह ने इब्राहिम को दर्ज दिया, कहा कि ए इब्राहिम, वो इतने साल से कुफ्र कर रहा है, उसको खाना दे रहे हैं, एक दिन इसका रिस्क हमने तुम्हारे हवाले किया और तुमने जो उसको भूखा छोड़ दिया। यहाँ पे दो पैगाम मिल गए, एक तो ये कि अल्लाह इतना रहमान रहीम है कि काफिर को भी अगर नबी के दरवाजे से खाली हाथ जाना पड़े तो अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता। क्योंकि जिला का जो महीना है ना, ये तकरूब इलाही का महीना है, अल्लाह से करीब होने का महीना है, अल्लाह वाला बनने का महीना है। तो इस महीने में हमें आमाल वैसी करने हैं। और दूसरा पैगाम ये कि इब्राहिम ने गलत काम नहीं किया, अगर काफिर को बुलाया और उसको वापस करके खाने नहीं खिलाया तो इब्राहिम का मजार ये गलत काम नहीं था। इब्राहिम की मोहब्बत का तकाजा है, ये इंसान की मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत करता है उसके दुश्मन से दुश्मनी करता है, उसके दोस्त से दोस्ती करता है। हम दुश्मनान अहले बैत को बुरा क्यों कहते हैं? इसलिए कि हम अहले बैत की मोहब्बत करते हैं। तो इब्राहिम ने अगर अल्लाह की मोहब्बत में उसको वापस कर दिया तो गलत काम नहीं किया, क्योंकि वो अल्लाह की तौहीद पर इकरार नहीं कर रहा और इब्राहिम तौहीद परस्त है, इसलिए उसको नहीं खिलाया। लेकिन अल्लाह ये बता रहा है कि काफिर हो या मुसलमान हो, अगर मेरा बंदा है तो मैं तो उसको रिस्क दूंगा चाहे वो मुझे माने या ना माने। तो ये महीना कुर्बानी का महीना है, ये महीना ईसा का महीना है। क्या आप देखा कि खलीलुल्लाह अल्लाह के जो नबी इब्राहिम है, इनको एक मरतबा वाकई पूरा सुना हुआ है आप लोगों का कि जब तब्दील दीन की लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया तो नमरूद जो जमाने का बादशाह था वो आपसे नाराज हुआ, काफ़ी रोकने की कोशिश की और चाहा कि तब्दील ना करें, लोगों को मुवाहिद ना बनाए। लेकिन जब देखा कि हज़रत इब्राहिम नहीं मान रहे हैं, खुदा की दीन फैला रहे हैं और खुद भी तौहीद परस्त हैं, दूसरों को भी बुतों की पूजा करने से रोक रहे हैं, तो जो जालिम का तरीका होता है कि जो हर ज़माने में आपने देखा कि जो 14 मासूमी की सीरत में आपने देखा कि हर ज़माने के जालिम ने आके जो है मासूम के साथ आके भी वही किया कि उनको इस दुनिया से खत्म कर दिया, जाहिर तौर पर जहर दे के तमाम शहीद कर दिया, वही काम हजरत इब्राहिम के साथ किया गया कि हजरत इब्राहिम को खत्म करने के लिए आग जलाई गई और बहुत सारी लकड़ियां जमा किया गया है और उसके बाद हजरत इब्राहिम को उस आग में देखने का प्रोग्राम बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे हजरत इब्राहिम की सीरत में हमें पैगाम मिलता है कि आया इब्राहिम के जो के रसूल से कई सौ साल पहले दुनिया से गुजरे हैं, लेकिन उनका ये फेल कुर्बानी के तौर हज पे करते हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तान हर जगह करते हैं, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है ना कि जिससे हम अंजाम देते हैं, तो वो फेल की जो इब्राहिम ने हमारे नबी से पहले अंजाम दिया था, अल्लाह को इतना पसंद आया कि अपने आखिरी नबी की उम्र के ऊपर वाजिब कर दिया कि तो हज पे जाएगा, कुर्बानी करेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि जब कोई शख्स अल्लाह के लिए इतना मुखलिस हो जाए तो फिर चाहे वो किसी भी जमान में हो, चाहे वो किसी भी मकान में हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी कबीले का हो, अल्लाह उसका नाम, उसका जिक्र, उसकी याद को बाकी रखता है। तो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के तौहीद के इकरार के जुर्म में इब्राहिम को सजा दी जा रही है और आग में फेंका जा रहा है। अल्लाह का दोस्त ऐसी आसानी से तो इंसान नहीं बन जाता है। खलीलुल्लाह जो हजरत इब्राहिम बने वो ऐसे तो नहीं बन गए, दो रकअत नमाज पढ़ी और खलीलुल्लाह बन गए, रमजान के रोजे रख लिए खलीलुल्लाह बन गए, नहीं ऐसे खलीलुल्लाह नहीं बन जाता। खलीलुल्लाह बनने के लिए इंसान को बहुत सख्त इम्तिहान देने पड़ते हैं कि जो हजरत इब्राहिम ने दिया कि आग तैयार कर ली गई। आज भी अगर आप मक्के से शाम की तरफ जाए तो एक पहाड़ टाइप नजर आता है, काले रंग का, जो जानने वाले उनसे पूछो तो वो यही बताते हैं कि ये वो राग का ढेर है कि जो इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा की गई थी, जो लकड़ियां जलने के बाद इतनी लकड़ियां जलती है, इतनी चिराग बनती है, और जब पहाड़ की तरह राग मौजूद है तो आप अंदाजा लगाए कितनी लकड़ियां रही होंगी कि जिनको जलाया गया था इब्राहिम को फेंकने के लिए, कि वो बुझने के बाद, खत्म होने के बाद पहाड़ की सूरत में आग बाकी है। तो इब्राहिम को ऐसी आग में फेंका जा रहा है कि जिसकी तपिश कई किलोमीटर दूर से महसूस हो, इतनी आग की तपिश थी कि ऊपर से उड़ने वाला परिंदा खुद बखुद भूल के नीचे गिर जाए, इतनी आग बड़ी आग थी, और उसमें इब्राहिम को फेंका जा रहा है। और इब्राहिम को जब फेंक दिया गया मंजिले को, ये बच्चों को ये तो मालूम ही नहीं होगा कि पहले जमाने में आग की तरह हथियार तो नहीं होते थे, तो एक चीज होती थी लकड़ी की बनी हुई, पत्ता लगा होता था और उसके ऊपर पत्थर रख के उसको एकदम से छोड़ देते थे, तो वो पत्थर को या आग को इस तरह फेंकती थी दुश्मन के ऊपर। हजरत इब्राहिम को मंजिले में रख के आग में फेंका गया। हजरत इब्राहिम अभी आग और फजा में थे तो उसने भी जिब्रील आया, कहा कि ऐ खलीलुल्लाह अगर कोई हाजत हो तो बयान करो। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि मुझे हाजत तो है लेकिन तुझसे नहीं है, यानी मुझे हाजत है, मेरी एक तमन्ना है, लेकिन वो तमन्ना तुझसे नहीं करनी, इसलिए जिससे मेरी हाजत है वो तो मेरे इरादे को जानता है। तो यहाँ पे खलीलुल्लाह इंसान ऐसे बनता है कि आग में अल्लाह की मोहब्बत में फेंका जा रहा है और अल्लाह का फरिश्ता आप कह रहा है कि अगर कोई मदद चाहिए तो तुम्हें मदद करने को तैयार है, और इब्राहिम कहें कि मदद चाहिए लेकिन दूसरे नहीं चाहिए। इतना अकीदा जब अपने रब के ऊपर हो, इतना एतमाद जब अपने अल्लाह के ऊपर हो, तो जो है वो आग को भी उधर जो है वो ये कह के ठंडा कर देता है कि या नारो पूरी पढ़ दो सलामा अला इब्राहिम, कि ऐ आग ठंडी हो जा। ठंडक भी तो इंसान के लिए नुकसानदेह है ना, अगर पानी 60 टेम्परेचर हो जाए तो इंसान मर जाएगा। तो अल्लाह कह रहे हैं आग को, कह आप ठंडी हो जा, ऐसी ठंडी नहीं हो जाना कि इब्राहिम जो है वो गर्मी से नहीं तो ठंडक से ही मर जाए, ऐसी ठंडी हो कि सलामती वाली ठंडक हो। और कभी इंसान ने जहन इंसानी ये सोच भी नहीं सकता कि आग के अंदर इंसान जाएगा और आग उसको जलाएगी नहीं। इतनी बड़ी आग के अंदर इब्राहिम को फेंक दिया गया और सब बैठ के खुश हो गए थे कि इब्राहिम तो अब जल के खाक हो गए होंगे, और इब्राहिम मजे से जो है वो आग के अंदर, जैसे आज के दौर में कहा जाए कराची की गर्मी के अंदर कोई एसी चला के बैठा हो तो आप कहेंगे, बाहर वाले कहेंगे कितनी गर्मी हो रही है, और अंदर वाला कहेगा मौसम कितना अच्छा हो रहा है। उस फिरौन नमरूद वाले खुश हो रहे हैं कि इब्राहिम को हमने आग में फेंक दिया और जल गए होंगे, और इब्राहिम अल्लाह की मोहब्बत का आप अजर पा रहे हैं कि आपको ठंडा कर दिया गया, क्योंकि पैगाम है हमारे रात के लिए कि आज हम भी अहले बैत की मोहब्बत में इस तरह परेशान किए जा रहे हैं, इस तरह आपको तंग किया जा रहा है, इस तरह आपके मसाइल उठाए जा रहे हैं। यकीन जानो कि या नारो पूरी पढ़ दो सलाम अला इब्राहिम, हमारे पास भी ईमान अगर सही हो जाए, अमल सही हो जाए, तो ये जो दुनिया की जाहिर परेशानी है ना, इब्राहिम को नमरूद ने तंग किया, कितना अर्सा तंग किया होगा, 60 साल, 70 साल, 200 साल, बिल पढ़ ये 200 साल कैसे गुजर जाते पता नहीं चलता। आज आप खैर औरतों से तो ये पूछने के आप कितने साल की कभी कोई नहीं बताता, लेकिन बिल्कुल अगर आप लोग अपनी उम्रों का अंदाजा लगाएं और आप ये सोचेंगे कितना साल गुजार चुकी है, मतलब 20 साल 22 साल से ज्यादा मैं एज नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि पसंद भी नहीं किया जाता, मतलब 20 साल 22 साल 18 साल की जो एज है आप लोग इसमें बधाई कहा जाएगा 18 साल 20 साल। अभी आप हिसाब करने बैठे तो कहते ना कब्र में जाकर इंसान हिसाब देगा, आप कब्र के अंदर क्या करते हैं, आप दुनिया में बैठ के अपनी जिंदगी के हाल में हिसाब करना शुरू करेंगे, आपको बचपन का सारा 18 साल तक का सारा शेड्यूल जहन में आ जाएगा, इतने साल की थी ये करती थी ये करती थी ये करती थी, इंसान को सब कुछ याद आ जाएगा। तो ये जो जिंदगी जिसे आप 20 साल कहते हैं ना, आप काउंट करने बैठे तो अच्छा इतनी जल्दी गुजर गए, लेकिन ये परेशानी के दिन जब गुजर जाते हैं उसके बाद जो आसानी के दिन आते हैं वो इंसान को ज्यादा मजा आता है, ज्यादा वो होता है। अब इब्राहिम कहाँ पे होंगे और नमरूद कहाँ पे होगा, हजरत इब्राहिम ने 70-80 साल जितने भी गुजारे परेशानी भी गुजारे लेकिन वो परेशानी गुजर के खत्म हो गई, लेकिन आप जो नमरूद गुजार रहे हैं वो हमेशा की है, हमेशा उसको आग में रहना है, हमेशा उसको अजाब उखदा में रहना है। तो जिलत के हवाले से ये पैगाम की हजरत इब्राहिम ने जो कुर्बानी दी, जो दीन पे अमल किया उसका असर और नतीजा ये निकला। हमारे आपके पैगाम ये कि देखो परेशान नहीं हो, अगर अल्लाह वाले हो अल्लाह के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हें दुनिया में भी अजर मिलेगा और आखिरत में मिलेगा। ये जैसे जो आयत मैंने पढ़ी सूरह हज कुरान का 22वां सूरह और उसकी 37 नंबर की आयत, ये कुर्बानी जो हम लोग करते हैं तो कुरान कह रहे कि लई अनाल्लाह लुहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन मिनालू अत्तक्वा मिनकुम, ये जो तुम कुर्बानी करते हो ना इसका गोश्त अल्लाह को पहुंचता है और ना ही खून अल्लाह को पहुंचता है, अल्लाह को जो तुमसे पहुंचता है वो तुम्हारा तक्वा है। अल्लाह को कुर्बानी से क्या फायदा होता है, क्या अल्लाह को गोश्त चाहिए होता है? अगर गोश्त चाहिए होता तो अल्लाह कुर्बानी में 3 हिस्से की 4 हिस्से बनाता है, कुर्बानी के अंदर 4 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं ना, जब भी कोई इंसान किसी जानवर की कुर्बानी करता है तो 3 हिस्से होते हैं, एक उस हिस्सा उसका अपना और अपने बीवी बच्चों फैमिली के लिए, दूसरा हिस्सा अजीज व अकारिब के लिए, तीसरा हिस्सा फुकरा के लिए। अगर कुर्बानी से अल्लाह का गोश्त और खून चाहिए होता तो अल्लाह 4 हिस्से रखता है, 4 हिस्से कुर्बानी के अंदर है, एक अल्लाह का, एक तुम्हारे बीवी बच्चों का, एक तुम्हारे भाई बहनों का, खानदान वालों का, चौथा हिस्सा फुकरा का, जबकि ऐसा नहीं है, 3 हिस्से हैं, एक तुम्हारा हिस्सा है तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे भाई बहनों का, अजीज व अकारिब का, और तीसरा हिस्सा तुम्हारा जो है वो फुकरा को देने के लिए। तो और तो आय भी ये बता रही है कि अल्लाह ही कह रहा है कि ना तुम्हारा ये कुर्बानी का गोश्त उस तक पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है। चलो गोश्त तो समझ में आता है कि गोश्त इंसान खाता है, खून तो नजीस है, गंदी चीज़ है, कोई खाता भी नहीं है इसको, तो कुरान में अल्लाह ने क्यों कहा कि ना तुम्हारा गोश्त हम तक पहुंचता है और ना ही तुम्हारा जानवर का खून हम तक पहुंचता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम खाते नहीं है उसका तस्करा कुरान में क्यों कर रहे हैं खुदा, क्योंकि कुरान का दावा ये कि कोई चीज़ बेकार इसके अंदर नहीं है, एक लफ्ज एक हर्फ इजाफी नहीं है कि आप कहेंगे ये माजल्ला अंदर से मिस्टेकन गलती से जो है वो जबान फिसल गई थी तो दिमाग गोश के साथ साथ खून भी आ गया, नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह का कलाम मासूम का कलाम है, कोई खता नहीं। तो ये लफ्ज खून क्यों इस्तेमाल हुआ, खून इसलिए इस्तेमाल हुआ कि जो लोग मुसलमान होंगे इस्लाम के दायरे में आ चुके थे ये नस्लन काफिर थे, इनके मिजाज में अभी तक, क्योंकि इंसान जब कोई नया ट्रैक पे आता है, कोई नई जिंदगी या नया तरीका इख्तियार करता है तो इतनी मतलब बेख्याली में वो वही काम कर देता है कि उसकी आदत होती है, कि जैसे मसलन बाल लोगों की गाली पकड़ने की बहुत आदत होती है, उनको अगर टोक दिया जाए रोक दिया जाए कि भाई अच्छी बात नहीं है तो बेचारे ठहर जाते हैं और गाली नहीं देते, लेकिन जब वो बिल्कुल बेख्याली में होते हैं तो उनकी जबान फिर फिसल जाती है, फिर गालियाँ उनकी जबान से निकलने लगती है, जबकि वो चाह नहीं रहा। यहाँ पर भी अल्लाह जो कह रहा है कि तुम्हारा खून अल्लाह को नहीं पहुँचता, इसलिए कह रहा है कि वो तो मुसलमान काफिर थे, काफिरों के मुसलमान होके आ गए हैं, तो काफिरों में भी कुफ्र के ज़माने में भी लोग खाने काबा के तवाफ करते थे, लोग कुर्बानी करते थे, लेकिन वो कुर्बानी क्या करते थे, इधर कुर्बानी करते थे उसका खून अपने बनाए हुए बुतों के ऊपर ले जाके छिड़कते थे। तो अल्लाह ने जो कहा कि तुम्हारी कुर्बानी का ना गोश्त हम तक पहुँचता है और ना ही खून पहुँचता है, तो वो खून इसलिए कहा देखो अगर तुम्हारे वहमो गुमान में हो ना कि तुम मुसलमान तो हो गए लेकिन तुम्हारे वहमो गुमान में हो कि ये खुदा भी वही वैसे ही खुदा है कि जैसे जिस खुदा की हम पूजा करते थे, तो ये खुदा वैसा नहीं है। तो तुम ये हरगिज कोशिश नहीं करना कि कुर्बानी करने के बाद खून ला के जो है खाने काबा के गिर जा हमारे नाम पे कहीं फेंकना शुरू कर दो। ना तुम्हारा खून पहुंचता है और ना ही तुम्हारा गोश पहुंचता है। इस कुर्बानी से पहुंचता क्या है? तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तुम्हारा ईमान पहुंचता है, तुम्हारी मोहब्बत पहुंचती है। तुमने काम किसके लिए किया? आज हम इस कुर्बानी को अगर आप देखेंगे जो हम तो करते हैं, इस कुर्बानी के अंदर शायद ही किसी 100 में से शायद 10 आदमी की कुर्बानी जो है ना वो कुर्बानी होती है, वरना अक्सर की कुर्बानी रियाकारी होती है। कितने का बकरा लाए हो? 45,000 लाए होंगे, 28,000 का बताएंगे 45,000। पहले ही स्टेप पहले तुमने कदम नहीं रखा और तुम निकल गए। क्या तुमने झूठ बोल दिया रियाकारी के लिए कि उसके अगर 75,000 की गाय आई है तो मेरे यहाँ 1,00,000 की आएगी? तो इसका मतलब है कि ये निंदा कुर्बानी नहीं हो रही, ये मोहल्ले वालों के लिए हो रही है, खानदान वाले के लिए हो रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो इस भेद को खुदा ने इतना पसंद किया, उसमें सारा के सारा काम अल्लाह के लिए था। वाकई का बैकग्राउंड क्या है छोटे बच्चों के अक्सर जो हजरत इब्राहिम ने 3 दिन ख्वाब में देखा कि अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह कर रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बताया कि बेटा मैंने देखा है कि मैं अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। तो बेटा ने कहा कि बाबा जब आपने ये ख्वाब देखा है तो आप इस काम को अंजाम दें। तो हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेके चले कुर्बानी के लिए। तो अगर इंशाल्लाह खुदा आपको हज की तौफीक अता करे कि जब आप हज पे जाएंगी तो आप देखेंगे कि हज के रुकन में एक रुकन है कि शैतान को पत्थर मारते 3 शैतान हैं। तो ये 3 शैतान क्या है कि जब इब्राहिम इस्माइल को देखे बड़े हैं ना, तो पहले छोटे शैतान ने आके इस्माइल को रोकने की कोशिश की, इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की, बाप बेटे नहीं बहके। फिर आगे बढ़े, फिर दरमियाना शैतान आया, उसने चाहा कि बाप बेटे को रोक दे, तो उन्होंने उसको पत्थर मार के भगाया। फिर बड़ा शैतान जो सबसे बड़ा इब्लीस वो आया, चाहा कि बहका दे तो नहीं बहक पाए। और उसके बाद इस्माइल को लिटाया और कुर्बानी करना चाहिए तो खुदा ने आसमान से दुम्बा भेजा और इस्माइल की कुर्बानी तब्दील हो गई दुम्बे। इस पूरे फेल के अंदर इब्राहिम के जो हम सुन्नत इब्राहिम अंजाम देते बताइए इसमें कहां पे रियाकारी थी? अल्लाह ने किसी और से कहा था कि अपना बेटा कुर्बान करो कि उसके मुकाबले इब्राहिम ने कहा उसका बेटा, मेरा बेटा तो नबी है, मैं अपने बेटे को कुर्बान करूंगा। यहां पे इब्राहिम जो काम करे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, बेटा कुर्बान कर दो, अल्लाह ने कहा कुर्बान कर दूंगा। जौदा ने देखा जो कि माँ भी है बेटी की, देखा कि अल्लाह का ही पैगाम है, हाजरा ने भी खामोशी क्या कर लिया, कुछ भी नहीं कहा। यानी बाप माँ बेटे सब के तीनों के फेज में सिर्फ सिर्फ अल्लाह है, कोई रियाकारी नहीं है। लेकिन आज हमारी कुर्बानी के अंदर पूरी की पूरी कुर्बानी रियाकारी होती है, सारी की सारी कुर्बानी का हमारे दारो मदार रियाकारी होती है, शुभादी होती है, और उसके बाद नतीजा कैसे मिलेगा? अल्लाह तो वो है कि मंजा आबिद हसन थे फलह अश्वाम सारी, जो अल्लाह के पास एक नेकी से आएगा अल्लाह उसको 10 नेकियां देता है। तो हम 25,000 का इतने महंगाई के तौर पर 28,000 का बकरा कुर्बान कर रहे हैं और उसके बाद ना हमारा रिस्क पड़ा, ना हमारी जान महफूज रही, ना हमारा माल बचा, कुछ भी नहीं बचा। क्या माजल्ला सुबह माजल अल्लाह धोखा दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक नेकी के साथ हम तुमको 10 देंगे, यहाँ मैंने इतनी मेहनत से महंगाई की तो उन्होंने कुर्बानी कर दी और उसका कोई अजर नहीं मिला। अजर उस वक्त मिलता कि जब ये कुर्बानी तुम्हारी अल्लाह के लिए होगी। आयतुल्लाह दस्तने अपने इस्तेआज़ा के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं। एक आदमी जो है नमाज पढ़ रहा था मस्जिद के अंदर। अब पहले की मस्जिद तो ऐसी होती थी, दरवाजे खुले हुए, कोई ऐसा चिकोटी का इंतजाम भी होता था। नमाज पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते नमाज में उसको ऐसा लगा जैसे दरवाजे से कोई आके बैठा है, एक लगी तो आवाज आई दरवाजे लगने की। तो इसने जैसे ही देखा कि कोई आया है, अब इसकी नमाज खुशू खुशू पढ़ रहे हैं, वो लंबे लंबे रुकू, वो लंबे लंबे कयाम। नमाज पढ़ने के बाद उसने जब घूम के देखा तो देखा कि मस्जिद के दरवाजे पे कुत्ता टेक लगाए बैठा है। बाद दफा जो है ना वो खुदा जानवर के जरिए से भी हिदायत करता है। उसके जहन में फौरन ख्याल आया कि देखो ये मेरी नमाज जो थी अल्लाह के लिए थी, कुत्ते के लिए। अगर अल्लाह के लिए थी तो कोई आए चाहे दरवाजा पर बच जाए, चाहे दीवार गिर जाए, نماز تو اگر اللہ کے لیے تو پیر سے تیر نکال دیا جائے امیر المومنین کو, ان کو پتہ نہ چلے گی کیا ہوا, اور یہاں کتا آگے بیٹھ جائے تو انسان کہے گا اچھا کوئی آ گئے چلو ہم نماز پرانی کر دی جائے. اس کا مطلب ریا کرے تو جو انسان جس کے لیے فیل کرے گا قرآن بھی کہ جس کے لیے عمل کرو گے روز قیامت اللہ کہے گا جب تو اس سے لو قربانی, اگر تمہاری اللہ کے لیے تو روز قیامت اجر اس کا اللہ دے گا. قربانی اگر محلے والے کے لیے تھی پڑوس کے لیے تھی تو جا کے روز قیامت جب انسان کہے گا نا پروردگار میں تو قربانی کی تھی تو اللہ کہے گا قربانی تم نے کی تھی فلاں پڑوسی کے لیے جا کے اجر اس سے لے لو, تم نے جو ہے وہ شو ماننے کے لیے کی تھی جاؤ اس کا اجر فلاں سے جا کے لے لو. تو اس واقعے کے اندر سارا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرو. یہ عید الاضحیٰ تو ذلحج کے مہینے میں آتی ہے, دس ذلحج کو آتی ہے, لیکن یہ تو وہ قربانی کی جو سنت ابراہیمی ہے, قربانی تو وہ ہے کہ جو ہم پورا سال دیتے رہتے ہیں. اس دور کے اندر کون پردہ کر رہا ہے کہ جو آپ پردہ کی بیٹھی ہیں آج کل, تو جتنے بے حیا ہو جاؤ اتنا ہی تم ترقی کرو گے. یہ چادر یہ مکھنے یہ اتار کے پھینک تو دیکھیں بھی آپ کتنی ترقی کرتی ہیں. کتنی جگہوں پہ مومنات کو چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو جاب نہیں ملتی, اچھی کیوں, اس لیے کہ آپ اسکارف پہن کے آ رہی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ جاہل ہیں, ایسی نہیں کہ وہ پڑھ لکھی نہیں کوالیفائڈ ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں, لیکن اچھی جگہ میں نہیں ملے کیوں, اس لیے کہ آپ کا امیج ایسا ہے کہ آپ کو ہم نہیں رکھ سکتے. ایک مومن نے مجھ سے شکایت کی کہ مولانا صاحب مجھے ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے گئی ہوں اور سب سے اچھا انٹرویو میں نے دیا, سب سے اچھی پڑھی لکھی کوالیفائڈ انجینئر میں تھی, لیکن مجھے نہیں بلایا گیا دوسروں کو بلا دیا گیا, اس لیے کہ میں جو گئی تھی وہ کوٹ اور اسکارف پہ گئی تھی, تو یہ جاب نہیں ملی نا. یہ امتحان ہے, یہ حجاب کرنے کی وجہ سے آگے دنیا آپ کو پیچھے کر رہی ہے, یہ قربانی ہے. ابراہیم نے تو ایک قربانی دی تھی نا, آج کا مومن تو ہر روز صبح بستر سے اٹھ کے اور رات کو بستر پہ جانے تک کتنی قربانیاں دیتا ہے. حجاب پہننے کی وجہ سے آپ کو اچھی جگہ جاب نہیں ملے گی, حجاب پہننے کی وجہ سے اب تو مومنین میں بھی ہو گیا نا, حتیٰ لڑکوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو پردے والی نہ ہو, یعنی جب مومنین کا یہ حال ہو جائے گا تو ہمیں ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو کتنے امتحان دیتے. لیکن عید الاضحیٰ کا پیغام یہ ہے کہ کبھی خدا کے امتحان میں گھبراؤ نہیں, جتنا اچھا امتحان دو گے اجر اس سے اچھا ملے گا. اگر آج حجاب پہننے کی وجہ سے جاب نہیں ملے گی تو ظاہر تنگ دستی میں زندگی گزرے گی نا, لیکن ایمان تو باقی رہے گا. کل شہزادی کون یہی آپ کہیں گے نا کہ یہ میری بیٹی تھی میری ماننے والی تھی, حجاب کی وجہ سے اس کو نوکری نہیں ملی, آج تجھے جنت پر برابر میں گھر دوں گی. تو بتاؤ اگر دنیا میں 50,000 کی نوکری مل جاتی یہ بہتر تھا, یہ جنت پر شہزادی کے برابر والا گھر مل جائے وہ زیادہ بہتر. آج اگر مومن کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے دنیا میں پیچھے ہو جانا پڑے قربانی دینی پڑے یہ زیادہ بہتر ہے, یا قربانی دینے کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین کہے گا کہ تم میری وجہ سے دنیا میں نظر انداز کیا گیا تھا نا, آج میرے برابر میں آ جائے, یہ زیادہ بہتر ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. اور قربانی کی آیت میں پیغام کیا مل رہا ہے کہ جب تم اللہ کے لیے کام کرو گے نا, وَذَٰلِكَ سَخَّرَ لَهَا لَكُمْ, کہ دیکھو قربانی جو اللہ کے لیے تم کرتے ہو نا تو اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے, یہ تو خدا تم کو دنیا میں دکھایا ہے. یہ جو سرکل جانور تھے نا طاقتور, تمہارے مقابلے میں کتنے طاقتور ہیں, تمہارا بدن 80 کلو 60 کلو ہے, یہ تو 250 کلو 500 کلو کی جانور ہے, ایک دفعہ سر ہلا دے تو تم جو ہے تو پھر دور جا کے گرو. لیکن تم نے جب اللہ کے لیے ارادہ کیا نا قربانی کے, دیکھو جانور کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. قرآن کی آیت پڑھو میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا, اس طاقتور جانور کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا, آپ تمہارے طاقت کو اتنا بڑھا دیا کہ تم نے اس کو پچھاڑ دیا گرایا اور چھری چلا دیا کچھ نہیں کر پایا. یہ پیغام ہے قربانی کا کہ اگر اللہ کے لیے کام کرو گے نا خدا تمہیں غیبی طاقت ایسی دے گا. ظاہری اعتبار سے تم پسماندہ یا دنیا سے پیچھے نظر آؤ گے, لیکن مانوی اعتبار سے تم اتنے طاقتور ہو گے کہ دنیا کا کوئی بھی مومن دنیا کا کوئی بھی دشمن تمہارا مقابلہ نہیں کر پائے گا. یہ عید کا پیغام ہے کہ یہ جو عید کے ایام چل رہے ہیں بہت اعمال ہیں, کہ جو حج پہ گئے ہیں وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں. یہ عرفے کا دن جو آنے والا ہے 9 ذوالحج کہ جس پر حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے, کہ آپ کی شہادت 9 ذوالحج کو ہوئی اور واقعہ کربلا ہوئی 10 محرم 61 ہجری, یعنی پورے تقریباً 1 مہینے کے بعد. لیکن حضرت مسلم کا شمار جو ہے وہ کربلا کے شہیدوں میں ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے نا کہ جو بھی واقعہ ہوا نہیں اس سے پہلے شہادت ہو گئی تو کربلا کے شہید کیسے ہو گئے؟ کربلا کا شہید ہونے کے لیے کربلا میں ہونا ضروری نہیں ہے, عاشور کے دن امام حسین کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جو امام حسین کے ساتھ ملایا جاتا ہے کربلا کے شہید میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی فکر امام حسین کی فکر ہے, چاہے وہ عاشور سے پہلے مرے, چاہے وہ عاشور کے بعد مرے, چاہے وہ امام حسین کے ساتھ مرے کربلا میں, چاہے وہ ہمارے پاکستان میں کہیں مر رہا ہے, اس کی مقصد اس کا پیغام حسین کا پیغام ہے تو دنیا میں کہیں بھی مرے وہ شہداء میں شمار ہو. تو یہ پیغام بھی آپ کو مل گیا ہے کہ کربلا کا شہید عرفے کے دن شہید ہو رہا ہے. عرفے کا دن وہ عظیم دن ہے کہ کہتے ہیں کہ عرفے کے دن یا تو انسان میدان عرفات میں ہو, اگر میدان عرفات میں نہیں جا سکتا تو امام حسین کے حرم میں قبے کے نیچے گنبد کے نیچے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. عرفے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص شب قدر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں نہیں اپنے گناہ کو معاف کروا سکا نا تو پھر وہ کبھی بھی اپنے گناہ کو معاف نہیں کروا پائے گا مگر یہ کہ عرفے کے لیے. شب قدر اتنی فضیلت والا دن اور رات دونوں, اس کی رات بھی فضیلت والی دن بھی فضیلت والا ہے. انسان خدا سے مغفرت طلب کرے تو خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں بھی نہ بخشا جائے نا تو مایوس نہیں ہو. عرفے کے دن ایسا ہے کہ عرفے کے دن اگر وہ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہے تو خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو عرفے کے دن اگر کوئی حاجی بھی نہیں ہے اور کوئی امام حسین کے حرم میں بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ ایسا نہیں. نو دلہ کا جو دن آنے والا ہے, آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے وہ اعمال کے جو عرفے کے دیے ہوئے وہ اعمال کریں. روزہ بھی مستحب ہے, روزہ افضل عبادت ہے, لیکن عرفے کا دن کے اعمال کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ مفادی میں بھی آپ پڑھیں گے کہ روزہ رکھنے سے اگر کمزوری ہو رہی ہے, روزہ رکھے گا گرمی کے دن میں جیسے کہ آج کا دن ہے, روزہ رکھے گا اگر آدمی تو اس کو پیاس بہت لگے گی تو وہ دعا نہیں پڑھ پائے گا, مثلا جو نماز ہے وہ نہیں پڑھ پائے گا, کہ عرفے کی جو دعا بڑی دورانی ہے وہ نہیں پڑھ پائے گا. تو شریعت کہہ رہی ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھو کہ سارے اعمال بن جاتے. ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ لوگ روزہ رکھ کے اعمال کریں وہ تو بہت اچھی بات, لیکن اگر نہیں رکھ سکتی روزہ تو روزہ نہیں رکھتے, لیکن عرفے کے جو اعمال ہے اس اعمال کو تو انجام ضرور دیں. اس لیے کہ ضرورت بھی ہے, حالات بھی ہیں, اس وقت جیسے کرائسس سے جیسے مصیبت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, خدا تمام مومنین کو اپنی زبان میں رکھے کہ آپ سب کو اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, تمام مومنین کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا دشمنان اہل بیت سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہ خوارج امیر المومنین نے ختم کیے تھے. امیر المومنین نہیں تھا کہ یہ علی تھا کہ جس نے خوارج کو ختم کیا. تو آج کا خوارج بھی ختم نہیں ہوگا مگر یہ دو چیزیں چاہیے, ایک ذوالفقار چاہیے اور ایک علی چاہیے. ذوالفقار بھی دنیا میں موجود ہے, علی کا بیٹا بھی موجود ہے, بس ہماری دعا کی ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں. دیکھیں دعا کرنے کے لیے ضروری ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں نا مولانا اجتماع شروع ہو, مولانا اجتماع شروع. میں نے ان کو مذاق میں دفعہ اپنے دوستوں کا, میں نے کہا تم لوگوں نے مولانا کو اے ٹی ایم مشین سمجھ رکھی ہے, اس طرح اے ٹی ایم مشین میں گئے کارڈ ڈالا ہی ہو اور جو ہے پیسے نکل آئے. میں نے کہا یہ اجتماع سے دعا اجتماع سے دعا, مجھ سے کیوں کہتے ہیں اجتماع شروع؟ جو دعا انسان خود کرتا ہے نا اپنے لیے, یقین جانے وہ کوئی دوسرا نہیں کرتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, اما یجیب المضطر اذا دعاه, کہ جب پریشان دعا کرتا ہے. آپ کا بچہ بیمار ہے, ایسے انسان ہونے کے ناطے مجھے ہمدردی ہوگی, لیکن جو تڑپ ماں کو ہوگی وہ مجھے تو نہیں ہوگی. میں تو خدا سے بچے ہی کہوں گا پروردگار اس کے بچے کو صحت دے دے, بیچاری کا اکلوتا بیٹا ہے. لیکن جس کا اکلوتا بیٹا بیمار ہوگا وہ ماں چھلک چھلک کرے گی پروردگار ہے ایک ہی تو میرا چراغ ہے, وہ بھی بیمار وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے. تو دعا انسان خود کرتا ہے. آپ کو جو پریشانی ہے, آپ کو جو مسائل ہیں, یہ عرفے کا دن امام زمانہ کو یاد کریں, کثرت سے دعا یہی کریں کہ یہ آخری عرفہ کا جو کہبت امام کا ہے, اگلا عرفہ جو ہے ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ منائیں. اس لیے کہ جب تک امام نہیں آئیں گے یہ پریشانی یہ مصیبت کی حل ہونے والی ہے ہی نہیں. آپ کتنے ہی اپنے جوانوں کو اپنے فوج اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ فوجی تیار کر لیں, لیکن آپ کی تعداد کتنی ہے, दुआए इफ्तिता में रमजान में आपने काफी मरतबा पढ़ा होगा ना कि जब दुआए इफ्तिता के आखिर में आप पहुंचते हैं तो शिकवा करते हैं ना, तो शिकवे में पांच शिकवे करते हैं, मैं आखिर के बाद पढ़ रहा हूँ कि शिकवा करते बाद ये कहते हैं ना कि परवरदिगार हम तुझसे शिकवा करते हैं किस चीज का, कि नबी जो है वो चला गया, रहमतुल आलमीन नबी चला गया हमारे दरमियान, लेकिन हमें ढालत मिल गई कब, कि जब नबी के जाने के बाद नबी का जानशीन दुनिया में था, यानी आइमा अलैहिस्सलाम, अमीर मोमिन से लेके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, लेकिन जब ये नबी का जानशीन भी खैबर पे चला गया, हम इसकी शिकवा तो करते हैं कि नबी के जाने का गम हमें बहुत था, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं आता था कि नबी का जानशीन तो मौजूद था, लेकिन नबी का जानशीन भी पड़ जाए खैबर पे है, ये भी गम हम बर्दाश्त कर लेते हैं उस सूरत में कि जब हमारी तादाद ज्यादा होती, हमारी तादाद कम है हमारे दुश्मन ज्यादा है, हमारे दुश्मन भी ज्यादा होते हमारी तादाद भी कम होती तब भी हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन हम जो तुझसे शिकवा कर रहे हैं उस बात की कर रहे हैं कि सारे दुश्मन जमा हो गए इकट्ठा हो गए सब मिलकर हम पे हमला कर रहे हैं, आज यहूदी हो आज ईसाई हो आज दुनिया के जितने भी फिरके सारे के सारे मुत्तहिद हैं किसके लिए, मोमिनीन के लिए, आप देखें शाम देख ले इराक देख ले पाकिस्तान देख ले हर जगह जो है मोमिनीन के ऊपर मुसीबत आई हुई, कहीं दाइश जैसे तकफीरी ग्रुप बना दिया जाता है, कहीं तालिबान जैसे मुख्तलिफ किस्म की जो एक ग्रुप बनाए जाते हैं, सारे के सारे मुत्तहिद हैं आपस में, ये हम मिजाज नहीं है, लेकिन हम मिजाज कहां पे हो जाते हैं जहां पे मोमिन का मसला आता है, तो यही तो इमाम कह रहे हैं कि खुदा से शिकवा करो कि सारे दुश्मन इकट्ठा होकर तुम्हारे टांग पे बैठे हुए, इसके खात्मे के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी है कि जब तक इमाम नहीं आएंगे कि खात्मा नहीं होगा, तो अरफे के दिन आ रहा है, अगर रोजा रख सकते हैं तो रोजा जरूर रखिए, और नहीं रख सकते कमजोरी महसूस हो रही है तो आप रोजा नहीं रखें, लेकिन आमाल को जरूर अंजाम दें, आमाल का तरीका यह है अगर कबूलियत के अमाल कहते हैं कि आपके अमाल कबूल हो जाए, एक तो तरीका ये होता है कि आप अपने घरों में बैठ के अमाल करें, लेकिन घरों में बैठ के अमाल करने का फायदा भी है नुकसान भी है, फायदा ये होता है कि आप अपने घर में दुआ करते करते काम याद आ गए उठ के गए काम करके आगे दोबारा शुरू कर दी, या कोई दरवाजे पे आ गया आप दुआ पढ़ रहे थे रिक्त ताली हो गई खुदा से लड़ लगने वाली थी बैल बज गई आप दरवाजे पूछने की कौन आया तसल टूट टूट गया, इज्तिमाही आमाल में ये फायदा होता है कि इतने सारे खवातीन बच्चे के बैठ के अमाल करें और खुदा को इनमें से किसी एक में तरस आ जाए और खुदा उसकी दुआ को कबूल करेगा उसकी वजह से सबकी दुआ कबूल हो जाएगी, घर में बैठ के हमारे आंसू नहीं निकल रहे थे लेकिन जब इज्तिमाही अमाल हुए किसी बच्ची ने मसायब पढ़ दिया किसी ने नौहा पढ़ दिया, देखिए आंसू निकालना है हमें किसी भी तरीके से, हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह कि अहले बैत की मुसीबत को याद करते हैं और अरफे के दिन तो मुस्लिम की शहादत का वैसे ही इंसान मसायब पढ़ता है, तो मसायब पढ़ के अमाल शुरू किए आंखें तो वैसे ही नमनाक थी, तो आप क्यों भी अमाल करेंगे तो ज्यादा कबूल होंगे, तो बेहतर तो ये कि एक जगह जमा होगी इज्तिमाही अमाल कर ली जाए अरफे की दुआ पढ़ ली जाए, और अगर नहीं कर सकते तो अकेले अकेले कर दें, लेकिन इज्तिमाही अमाल में ये फायदा है कि अगर एक कभी कबूल हो गया तो सबके कबूल हो जाएंगे, तो अरफे के दिन आने वाला है इसको फरामोश नहीं कीजिएगा, जरूर आमाल कीजिए चाहे घर में कीजिए चाहे इज्तिमाही आमाल मदरसे में कीजिए, उसके बाद अब टाइम भी कम रह गया, उसके बाद आखिरी कुर्बानी के अहकाम, कुर्बानी अगर के पहले हमारे यहाँ कुर्बानी कम होती लेकिन अब जहां पे ये शोर बहुत उठता है कि महंगाई बहुत है गुर्बत बहुत है लेकिन दिखाई कुछ और देता है, जब मस्जिद के नाम पे मदरसे के नाम पे चंदा लेने जाओ तो कहा मौलाना साहब अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा आप चंदे की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये खाली हो जाते हैं, लेकिन जब कुर्बानी का महीना आता है तो वही 25 रुपए चंदा देने वाला जो एक्सक्यूज कर रहा था वही 28,000 की गाय बकरा ला के खड़ा कर लेगा, अब कहां से पैसे आ गए, तो इसका मतलब है कि अल्लाह के लिए पैसे नहीं है बाकी सारे कामों के लिए पैसे, तो मसला नहीं अब कुर्बानी के रवाज ज्यादा हो गए, तो कुर्बानी जो हम करते हैं अगर हमको मसाइल मालूम हो जाए तो हमको इसका इसका ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं, इसी तरह अगर आप मदरसे में नहीं आती आपको नमाज पढ़ना घर में भी आपकी माँ सिखा सकती, आपको दीन की बातें मेंबर से मालूम हो जाती, लेकिन जो मदरसे में आने के बाद दिमाग खुलता है इंसान का मिजाज बनता है दीन की तरफ वो घर के दीनी माहौल से नहीं बनता, قربانی کے احکام جب نہیں بیان ہوئے تھے تب بھی قربانیاں لوگ کر رہے تھے، قربانیوں کی صحیح ہو رہی تھی لیکن فائدے کم مل رہے تھے. اب جب مسئلے معلوم ہو جائے تو انسان کو فائدے زیادہ ملنے لگتے ہیں. کہ جیسے اگر کسی کو مسئلہ نہیں معلوم ہو تو وہ کیا کرے گا، مغرب کی نماز پڑھے گا، پھر نماز غفیلہ پڑھے گا، پھر نماز مغرب کی نافلہ پڑھے گا، پھر نماز غفیلہ پڑھے گا. لیکن اگر کسی کو یہ مسئلہ معلوم ہو کہ نماز غفیلہ میں ہی نماز مغرب کی نافلہ کی نیت کر لے تو دیکھنے والا کہے گا کہ خالی چار رکعت نماز پڑھی اس میں، لیکن اللہ کے کیا لکھا جائے گا، غفیلہ کا ثواب ٹک لگا دیا، مغرب کی نافلہ کا ثواب ٹک لگا دیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دین کی معلومات تھی، اس نے دین پہ عمل کیا، کم وقت میں اس کو ڈبل فائدہ مل گیا، دوسرا مومن ایک ہی فائدہ لے پایا. تو اگر مسائل انسان سیکھ لے تو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. تو قربانی واجب تو صرف اس کے لیے کہ جو حج کرنے گیا ہوا ہے اور مینا میں بیٹھا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص ہے اس کے اوپر واجب نہیں. سنت موقعہ ہے، یعنی ایسی سنت جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کو ضرور انجام دو، تو سنت موقع ہے. اگر کوئی شخص اس کو انجام نہیں دیتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر انجام دیتا تو بہت اچھی بات ہے. اسلام میں قرض لینے کی بہت زیادہ ممانعت ہے کہ قرض نہیں ہوتے. اچھا، قرض دینے کی بہت تاکید ہے کہ قرض دو، قرض دینے والے کو دینے پہ تشویق کی گئی ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے، لیکن لینے کو منع کیا گیا ہے. دینے کی اس لیے تاکید کی گئی کہ جب ایک مومن آتا ہے تو اگر ضرورت مند ہے تو اس کو دے دو تاکہ اس کی مشکل کو حل ہو جائے، اس کی مشکل حل ہو جائے. اور قرض دینے کی ممانعت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان عادی نہ ہو جائے، کیونکہ آج جو یورپ میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم سے زیادہ اچھے گھر ان کے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی گورنمنٹ ان کی ہے، نہ وہاں پہ قتل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ یورپ میں سب سے زیادہ مشکل مسئلہ کیا ہے، لوگ خودکشی بہت کرتے ہیں. کسی نے ٹیڈی رکھ کے کرپٹی مار لی، کوئی پنکھے سے لٹک گیا، کوئی بلڈنگ سے کود گیا. اگر کراچی والا یہ سب کرتا ہوا نظر آئے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دو دن کے بعد جب سی این جی کھلی ہے تو آپ جا کے لائنیں دیکھیں، بےچارا مومن پریشان ہے کہ میں سی این جی کیسے بھراؤں، ہر روز بجلی کے بل بھر رہے ہیں، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، شکر مہنگا. تو خودکشی تو ہم کو کرنی چاہیے، لیکن پاکستان میں خودکشی کا ریشو کم ہے، یورپ میں ریشو زیادہ ہے. کیوں؟ وہاں پہ خودکشی کا ریشو اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں پہ تحمل نہیں، برداشت نہیں. انسان فوراً جو ہے وہ ڈسارڈ ہو جاتا ہے، دل برداشت ہو جاتا ہے، مارنے پہ تو جاتا ہے کہ میں مرنے کو نجات مل جائے گی. لیکن مومن برداشت کرتا ہے، وہ برداشت کرنے کے بعد تحمل کرتا ہے اور پھر وہ اس کو سروائیو کرتا ہے اور پھر نزدیک تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ قربانی سنت موقع ہے کہ کوئی نہیں بھی کر رہا تو کوئی گناہ نہیں کر رہا. لیکن جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر واجب ہے. اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو وہ احرام پہننے سے جو چیزیں ان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، جب تک کہ وہ قربانی نہیں کریں گے، چاہے وہ احرام کو اتار کے پھینک دے، شرمام پھر پہننے شروع کر دے، ان کے اوپر وہ 20-22 چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں احرام پہننے سے، وہ ان کے اوپر حرام نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں چھو سکتے. قربانی نہیں کی انہوں نے، پاکستان آ کے 2 سال تک وہ بیٹھے ہوئے، قربانی نہیں کی 2 سال تک، نہ وہ خوشبو سونگھ سکتے ہیں، نہ وہ شیشہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ کنگھی کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی کریم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں احرام پہننے سے حرام ہوئی تھی وہ حرام نہیں. تو واجب قربانی صرف اس کے لیے کہ جو سعودی عرب میں حج کر رہا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم سب کے پاس سنت موقع ہے، کریں تو اچھی بات ہے. قربانی کے اندر فائدہ اگر مسئلہ سیکھ لیں تو ایک فائدہ اور بھی ہو جاتا ہے. اسلام میں مستحب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا حقیقہ کرو، ختنا حقیقہ. اگر لڑکا ہے تو ختنا اور لڑکی ہے تو حقیقہ وغیرہ، لڑکی لڑکے دونوں کا، کہ 7ویں دن مستحب ہے. عام طور پر جو مومنین ہوتے ہیں وہ حقیقے میں نہیں کر پاتے، اگلے مہینے کریں گے، اگلے مہینے کریں گے، اگلے مہینے کریں گے، یہاں تک کہ بچی شادی ہو کے چلی جاتی ہے، حقیقہ نہیں ہو پاتا، نہ لڑکی کا نہ لڑکی کا. لڑکے کا تو پھر بھی لوگ کر لیتے، کیونکہ لڑکی کی پیدائش کو پتہ نہیں کیا کارنامہ سمجھتے ہیں، پتہ نہیں لڑکی کی پیدائش کو کوئی بہت بڑا اپنا ہنر سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. اسلام میں لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ جتنا احترام فضیلت لڑکی کے لیے کہی گئی ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو جائیں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو اس میں مزاق سے کہتا ہوں کہ جہنم کا دروازہ دنیا میں کھل گیا، جنت کے کھلے گا تو کیا فرق پڑ گیا. کیونکہ داماد وہ ایسا معصور ہوتا ہے کہ نہ اس کو آپ نگل سکتے نہ ابل سکتے. اگر خراب داماد مل گیا تو یقین جانے کہ ایسا معصور بن جاتا ہے. तो बेटी जो है ना वो रहमत है, बेटा जो है वो नेमत है। नेमत का सवाल किया जाएगा रोज़े क़यामत के, कहाँ पर चुकी, रहमत के बारे में सवाल नहीं होगा। रवायत नहीं कि अगर बेटी नहीं होना तो जनाजा सुना रहता है, बाप का जनाजा, माँ का जनाजे की रौनक जो है ना वो बेटियों से होती है। बेटियां दहाड़े मार मार के रोती, बहुत साथ में टेढ़ी खड़ी रहती है कि हाँ साइज नहीं तक के अच्छा हो गई। जैसे मैं कारवां लेके जाता हूँ तो नजफ में वादी सलाम कब्रस्तान है, तो वहां मुस्ताहब है कि मोमी जाए तो अपनी कब्र बनाए, क्योंकि दो कब्रस्तान, एक वादी सलाम और एक वादी बरू। जितने मुहिबाने अहले बैत होंगे उनकी सबकी रूहें जो है वो वादी सलाम जाएंगी, और जितने दुश्मनाने अहले बैत होंगी उनकी रूहें वादी बरहूत में जाएंगी। तो मुस्ताहब है कि वहां पर उनकी कब्रें बनाए। तो मैं जब भी कारवां के साथ जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ पर मुस्ताहब की कब्रें बनाए, लेकिन दुश्मनी में नहीं बनाइएगा कि बहू सास की बना दे, सास बहू की बना दे। मैंने कहा ये कब्रस्तान दुश्मनी निकालने के लिए नहीं है, बल्कि मोहब्बत के इजहार के लिए। अगर मैं अपनी माँ की कब्र बना रहा हूँ तो मतलब ये नहीं है मैं माँ से दुश्मनी कर रहा हूँ, मैं माँ से मोहब्बत कर रहा हूँ। ये दुनिया के कब्रस्तान से और उठ के अगर वादी सलाम में आ जाए, अमीर मोमिन के बराबर में आ जाए, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये इजहार मोहब्बत है। तो कुर्बानी में आमतौर पर क्या होता है कि लोग अकीदे में क्या होता है कि बेटे का तो कर देते, लड़के पर नहीं कर पाते, क्योंकि आमतौर पर लड़की लड़के में माने फर्क किया जाता है। खाना पकेगा, गोश है, अच्छी गोटियाँ बेटा खाएगा, बाकी जो बच्चे के बेटी खाएगी, जबकि ऐसा नहीं, दोनों बराबर है। तो बिल फर्ज अगर कोई ऐसे वालदैन है कि अपनी बेटी बेटे में फर्क करते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए मौका में उनको मसला बता देता हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। क्या कहा, आप कुर्बानी का जानवर लेके आए हैं और बेटी का अकीका नहीं किया, या बेटे का नहीं किया, या अपने अभी तक अकीका नहीं हुआ, क्योंकि अकीका बहुत जरूरी है, करना चाहिए हर इंसान के साथ। हमारे अम्मा अब्बा, यानी मेरे अम्मा अब्बा नहीं, हम सब के अम्मा अब्बा, हजरत आदम और हजरत हव्वा ने शैतान के बहकावे में जो खा दिया था, तो कहते हैं कि वो हर इंसान के अंदर एक जब पैदा होता है तो एक शैतान होता है। तो जो अकीका करके हम जानवर को ज़िबह करते हैं तो वो पैदा होने वाला जो शैतान होता है वो मर जाता है, फिर इंसान सारी जिंदगी जो है वो गुमराह देर से हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर के शैतान तो मर चुका होता है। तो अगर बिल्कुल किसी ने अकीका नहीं किया और वो अकीका करना चाहे तो उसके लिए बेहतरीन मौका है कि जो कुर्बानी का जानवर लेके आ गए हो, इसी के अंदर कुर्बानी की नियत भी करो और अकीके की नियत भी करो, कुर्बानी के सवाब भी मिल जाएगा और बच्चे का अकीके का भी फर्ज अदा हो जाएगा। कुर्बानी इतनी अहम है कि कर्ज के बारे में मानियत है ना, कि बयान कर रहा था, तो हज़रत उम्मे सलमा आई रसूल की ज़ौजा, रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कुर्बानी के पैसे नहीं, क्योंकि शौहर के ऊपर बीवी का वाजिब खर्चा वाजिब है, बस खाना पीना और जिस स्टैंडर्ड की वो लड़की है उस हिसाब से उसको कपड़े देना साल में, बाकी इसके अलावा ईद पर नया जोड़ा बनाना ये कोई वाजिब नहीं है, या उसको जो है वो फैशन बदल गया, आप जो है वो शादी में जाने के लिए पार्लर तैयार होना पड़ता है तो वो उसको पार्लर में जाना है, पैसे मांग रहे तो पैसे देना वाजिब नहीं, वाजिब से उसके वाजिब वाजिब खर्चे जो जरूरियात है वो उसको देना है। तो यहाँ पे ये भी हो जाता है कि रसूल अल्लाह ने कहा कि जौदा ने कहा कि मुझे कुर्बानी के पैसे नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ कर्जा दो, कुर्बानी करो, खुदा इस कर्जे को जल्दी अदा कर देगा। यानी कर्जा लेने की रसूल अल्लाह मोहमाने बयान कर रहे हैं, एक और कुर्बानी इतनी अहम चीज़ है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अपनी जौदा से कि जाओ कर्जा दो और कुर्बानी करो, खुदा इस कर्जे को बहुत जल्द अदा कर देगा। और दूसरी हदीस अमीर मोमिन के हवाले से कि अगर इंसानों को पता चल जाए कुर्बानी का फायदा, तो लोग कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कुर्बानी नहीं करेंगे। अमीर मोमिन फरमाते हैं कि जब कुर्बानी के जानवर के ऊपर छुरी फेरी जाती है तो जानवर का जो खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह को खुदा माफ कर देता है उस एक कतरे की वजह से। तो इतनी फजीलत है कुर्बानी के जानवर की, तो सुन्नत मौकेदा है। अच्छा, महंगाई की हकीकत बात यही है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, हम जिस माशे में रहते हैं, हमारे बरादरान अहले सुन्नत ज्यादा हमारे, तो बहुत सारी चीजें उनकी फिर के हमारे ऊपर आ गई हैं और हम समझते हैं कि हाँ ऐसी मसला, जबकि ऐसा मसला नहीं। मसलन जैसे बकरे में दो हिस्सा ले सकते हैं, गाय में सात, ऊंट में पता नहीं, मुझे नहीं पता माशे में कितना मशहूर है, जबकि ऐसा नहीं है। वो शायद गाय में सात इसलिए रखे होंगे, गाय जरा मोटी होती है तो सात आदमी को बदन उठा लेंगे, बकरा छोटा सा होता है तो दो आदमी पे बैठेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि जो कुर्बानी करेगा वो पूरे सिराज से इस बकरे के ऊपर या गाय के ऊपर या ऊँट के ऊपर बैठ के गुजरेगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बकरे में दो इसलिए कि शायद बकरा छोटा होता है तो दो आदमी के बोझ उठा के और इतने बारीक कुल में से कैसे गुजरेगा, तो कहा कि बकरे में दो गाय में सात, जबकि ऐसा नहीं। एक बकरा लेके आ गया वो भी मतलब बड़ा मरगिंदा, अभी खड़े खड़े मर जाएगा ऐसा दुबला था। उसके अंदर खानदान के मतलब एक खानदान के 250 अफराध है गिर पड़, और 250 अफराध उसमें नियत कर ले कि हम इसको कुर्बान करते हैं अल्लाह के लिए, यकीन जाने कि 250 की 250 आदमियों को कुर्बानी की सवाब मिलेगी। ना बकरे में कोई कह जाए कितने इंसान होने चाहिए और ना गाय में कह जाए। अगर घर का एक बड़ा सरबरा बकरा लेके आ रहा है, अच्छा कुर्बानी के लिए ये भी शर्त है कि मैं अब जिंदा हूं तो मैं ही करूंगा, मेरे वालदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, मुझे उनसे मोहब्बत है, मेरे वालदैन को भी अपनी इस कुर्बानी में शरीक कर लो, उनको भी सवाब मिल जाएगा। वालदैन तो छोड़े, आपको सवाब बढ़ाना है, आप इस कुर्बानी के अंदर आए भाई मासूमीन की नियाबत कर ले। मैं रसूलुल्लाह की नियाबत भी कर रहा हूँ, मैं इमाम ज़माना की नियाबत भी कर रहा हूँ, मैं शहजादी गौनेह की नियाबत भी कर रहा हूँ, यकीन जाने कुर्बानी के सवाब दोबारा हो जाएगा। इजहार मोहब्बत है कि बीबी इतनी महंगाई में हमने कि हम आपके लिए कुर्बानी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें अपने मोमिन को जिंदा को शामिल करना, भाई पैसे वाला है कुर्बानी का जाना लेके आ गया, बाकी भाई बहन गरीब है, अगर ये चाहता है कि इसका सवाब और बढ़ जाए कि अपने सारे भाई बहनों से कहे भैया तुम लोग भी नियत कर लो। इसमें क्या जा रहा है, कुर्बानी का जाना तो वैसे ही कुर्बान हो रहा है, नियत कर लेने से कोई बकरे के ऊपर नाम तो नहीं लिख जाता ना कि ये फला फला फला, सबको पता चल जाएगा कि इसने कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी तो पूरे मोहल्ले ने की। अल्लाह बड़ा सत्तारी लुयू में ना बकरे के पीठ पे लिखा था ना गाय के माथे के ऊपर, किसी को पता ही नहीं चलेगा कितने लोग इसमें शामिल हैं। तो एक गाय एक बकरे एक कहता सबकी कुर्बानी कर सकते हैं, जिंदा मुर्दा सबकी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी करने के बाद आमतौर पर होता ही है, बस टाइम भी पूरा हो गया, कि होता ही है कि आमतौर पर जो है कुर्बानी के दिनों में आप देखें कि खाद का बड़ा मसला होता है। खाद में कुर्बानी करने वाले की खाद कैसी जाती है, बकरा तो दबा हुआ था इसलिए उसकी खाल गई, जिंदगी खाल इसलिए चली जाती है कि फला तंदीम को चाहिए था, फला को चाहिए था, फला को चाहिए था, और चक्कर के अंदर जो है वो इंसान मजबूर हो जाता है। या बात दफा इंसान बहुत ज्यादा किफायशार होता है ना, वो कहता है कि आम दिनों में तो बकरा जो है वो हजार का कसाई काटता था, कसाई को भी तो ईद होगी ना, खुदा ने हर कौम हर पेशे के लिए ना एक दिन रखा है, कसाई के लिए ईद का दिन रखा है, मोहनों के लिए मुहर्रम रमजान सफर रखा है, तो हर शोबे के लिए अल्लाह ने दिन रखा है, डॉक्टर के लिए भी रखा है, बारिश हो गई वबा फैल गई डॉक्टर की मौत हो गई, और आजकल कब्रिस्तान वालों के लिए भी बड़ी मौज है, हर आए दिन कोई ना कोई मारा जाता है, उनका कफन बिक रहा है, उनकी खबर बिक रही है, बड़े आसानी। तो खुदा ने हर पेशे के लिए एक दिन रखा है कि उसको उसका हक मिल जाता है। तो कुर्बानी का आम दिनों में हजार में काटता था, अब 3,000 ले रहा है, और आने के बाद उसने कहा कि मैं लूंगा तो 3,000, क्योंकि वैसे तो कसाई को कोई मुड़ी लगाता, लेकिन ईद का दिन वो होता है कि कसाई मुड़ी लगा रहा होता, आप उसके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, फोन कर रहे थे भाई कब आएगा भाई कब आएगा, भाई कहता है कि भाई बस बस अभी आया अभी आया, एक की गर्दन काटता है, एक की खाल उतारता है, एक की सीढ़ी बनाता है, 15 बकरे 15 जानवर लिटाए हुए सब बैठे हैं, यार कसाई नहीं आया कसाई नहीं आया, मगरी बोरी तो ये मसला होता है। तो कसाई ने आपसे कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे घर आऊंगा कुर्बानी करने के लिए, देखो लेता तो मैं 3,000, लेकिन तुम चूंकि अपने आदमी हो तुम्हें 1,500 दूंगा, खाल मुझे दे दूंगी। आपने कहा ये तो मैं सस्ता छूट रहा हूँ, 3,000 वो लेता है और ये तो मुझसे 1,500 ले रहा है, खाल लेके जा रहा है, खाल तो वैसे ही कोई ना कोई छीन के ले जाएगा, चलो इसको दे। अगर आपने खाल उसको दे दी तो ये कोई कुर्बानी आपकी बात ही नहीं हो गई, गुनाह नहीं हो गया। लेकिन बेहतर ये है कि कुर्बानी को जो है ना वो उजरत में शुमार ना किया जाए, यानी कुर्बानी की खाल जब आपने कसाई को दे दी और 1,500 रुपए दिए, तो इसका मतलब है कि आपने कसाई की उजरत में 1,500 रुपए खाल के लगाए हैं। कहते हैं कि मकरूह है कि कुर्बानी के जानवर की खाल आप उजरत में दे दें, आप नहीं देना चाहते थे। कोई तंजीम वाला आया उसने कहा कि देता है खाल या तेरी खाल उतार के ले जाऊं, आपने कहा भाई ले जाओ, तो आप यहाँ पे मैं तो मजबूर था मैं तो नहीं दे रहा था, वो तो खुद ले गया, तो अगर वो जबरदस्ती लेके भी चला गया तो उसे ले जाने दो। आप मतलब गाय की खाल की कीमत मतलब 2,000 थी, तो आपको 2,000 रुपये सदका कर दें तो आपको जो है वो पूरा के पूरा जो है वो कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। قربانی کے جانور قربانی کا وقت کون سا ہوتا ہے اور کب تک ہے؟ جیسے نماز کا 12:30 بجے اذان ہو جاتی ہے تو یہ 12:30 بجے جو دور کی فضیلت کا وقت ہے، اور 4 اگر نماز پڑھنے کا جب ٹائم گزر گیا اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فضیلت کے وقت زہر کا کب ہے؟ جیسے ہی اذان ہوئی، اور اذان کے بعد اتنی دیر کہ جتنی دیر میں 4 بجے نماز ہوتی ہے یہ اس کی فضیلت کا وقت ہے، اور اس کے بعد مشترک وقت ہے مغرب تک کا، مغرب کے اذان سے پہلے پہلے آپ زہر عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو قربانی میں بھی کیا کوئی ایسا وقت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10, 11 اور 12۔ کب شروع کرنی ہے اور کب سے کب تک کرنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو سورج نکلنے کے بعد، سورج جب نکل جائے، مثلا جیسے آج کل جو ہے وہ 6:30 بجے سورج نکلتا ہے، 6:30 بجے سورج نکل گیا، اور اتنی دیر کہ جتنی دیر میں عید کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن عید کی نماز غیبت امام میں مستحب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا وہ عید بقرعید کی نماز ضرور پڑھتا، کیونکہ پورے سال کی نماز تو روز پڑھنی پڑے گی، روز کون پڑھے اتنا ٹائم جس کے پاس ہے، یہ تو سال میں 2 مرتبہ پڑھنی ہوتی، تو عید پہ زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو اگر عید کی نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ سننا تھا، لیکن پڑھے زیادہ بہتر ہے۔ تو صبح سورج نکلنے کے بعد جتنی دیر میں عید کی نماز ہوتی ہے، مطلب عید کی نماز آدھا گھنٹے میں ہوتی ہے، کیونکہ عید کی دو رکعت نماز کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، تو 15 منٹ کی اگر خطبے لگا لیں، اور یعنی تقریباً 45 منٹ میں نماز خطبوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جتنی دیر میں نماز ہوتی ہے اس نماز کے ٹائم کے بعد قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی سورج نکلنے کے بعد میں قربانی کر لے تو اس کی قربانی حرام نہیں ہو گئی، ضائع نہیں ہو گئی، صحیح ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ اتنی دیر ویٹ کرے سورج نکلنے کے بعد کہ جتنی دیر میں عید کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو 10 ذی الحج کو سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر کہ جتنی دیر میں نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد سے قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور 12 ذی الحج کو مغرب کی نماز سے پہلے پہلے قربانی کر لے تو اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ عید کتنی بڑی افراتفری ہوتی ہے، قصائی ہاتھ ملنے نہیں آ رہے ہوتے، نارمل 9 ذی الحج کو قربانی کر لیتا ہوں، 9 ذی الحج کو آپ نے قربانی کر لی، قربانی کے ثواب نہیں ملے گا۔ آپ مسافرت پہ گئے ہوئے تھے یا قصائی نے گڑبڑ کر دی، 3 دن دھوکہ دی طرح نہیں آیا، اور 12 ذی الحج کی مغرب ہو گئی، آپ نے 13 کو قربانی کر دی کہ چلو ایک دن سے کیا فرق پڑتا، قربانی کے ثواب نہیں ملے گا۔ وہ سنت ابراہیم کا جو ثواب ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا۔ وہ ثواب کب ہے؟ وہ 10 سے لے کے 12 تک مغرب سے پہلے پہلے آپ کر لیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ مختصر سے احکام تھے قربانی کے۔ اچھا ایک چیز اور بیان کر دوں، اگر ٹائم بالکل نہیں رہا، میں بار بار یہ کہتا ہوں ٹائم نہیں رہا، اور یہ کہہ کے پڑھے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو اتنی غور سے سننے میں کیا کروں، اگر آپ کو بھی کہیں دکھائیں ادھر ادھر گھومیں، ادھر ادھر آسمان دیکھیں، کیونکہ جب بھی کسی پڑھنے والے کو پریشان کرنا ہو نا تو آپ بار بار کھڑی دیکھیں، سامنے والا پڑھنے والا خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یا ذاکرہ، تو سمجھ جاتی ہے کہ آپ بہت ہو گیا اب وائنڈ اپ کرو، اور نہ آپ گھڑی دیکھ رہی ہیں نہ اپنی کلائی کی بندی گھڑی دیکھ رہی ہیں، تو میں بھی پڑھے جا رہا ہوں کہ قربانی میں کے احکام جو بیان ہو رہے ہیں کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں ہم کو 3 حصے بنانے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ اپنا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کا، اور ایک حصہ جو ہے وہ فقراء و مساکین کا۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جب 10 ذی الحج کو ہم قربانی کرتے ہیں، اور ہمارے ہم سالانہ مجلس جو ہمارے گھر میں زنانہ مردانہ ہونے والی ہے وہ الگ ہونے والی ہے 18 محرم کو، خاندانی مجلس ہم ہمیشہ کرتے ہیں، پورا بکرا ذبح کیا، کیونکہ ہم نے قربانی میں ایک چیز نہیں خریدی، 2 چیزیں خریدی، جیسے آپ اشتہار دیکھتے ہیں نا 1 buy 1 get 1 فری، شیمپو خریدے آپ کو شان مسالے کا پیکٹ فری مل جائے گا۔ تو بعض جگہ پہ قربانی کے جانور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ قربانی کے جانور سوزوکی میں آیا، ساتھ میں ڈیپ فریزر بھی آ رہا ہے، تو کیا یہ ڈیپ فریزر بکرے کے ساتھ ملا تھا؟ 1 buy 1 get 1 فری کے بکرا خریدے ڈیپ فریزر فری مل جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈیپ فریزر اس لیے کیا ہے کہ اب تو ہمیں ہرسانی کرنی ہے، اور ہمارے یہاں ہوتی ہے 18 محرم کی مسجد، قربانی کی بیچارے مسکین فقرا سب بیٹھے رہ گئے، پورے کے پورے ڈیپ فریزر کے اندر چلا گیا، اور وہ نکلا کب؟ پور 18 کو نکلا صبح، کیونکہ شام کو مجلس ہے، اور پورا مجلس کے لیے تیار ہو، بریانی پکی، پورے خاندان نے کہا گوشت بڑا اچھا، تعریف کر کے چلے، ہم بھی خوش ہو گئے۔ اگر کوئی ایسا بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ثواب تھا نا مومنین کو دینے کا، بکرا کو دینے کا، وہ نہیں ملے گا۔ تو کوئی اگر کہ پورا پورا بکرا یا گائے یا اونٹ फ्रीजर के अंदर डाल दे और पूरे साल खाता रहे तभी कोई हर्ट नहीं है, लेकिन असल जो है वो ये कि अपने घर वालों के लिए निकाले, कोकरा के लिए निकाले, मसाकिन के लिए निकाले। इसके अलावा अब कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही, याद नहीं आ रहा कि और कोई ऐसी चीज रह गई हो कि जो बयान की जाए। एक मसला और आता है कि कुर्बानी के लिए बेहतर तो ये है कि मोमिन ढूंढा जाए कसाई, लेकिन इन दिनों में तो मुसलमान कसाई मिलना मुश्किल होता है, सीधा गया मोमिन ढूंढने। और मोमिन को जब ये पता चल जाए कि दूसरा मोमिन उसके ऊपर डिपेंड करता है, यकीन जाने मोमिन काफी से बदतर हो जाए। मेरा प्रदादी तजर्बा है, ये मोमिन समझ के जब भी किसी काम के लिए किसी को बुलाया है वो काम आम आदमी करता है एक दिन में करता, मोमिन ने चार दिन छह महीने लगा दिए। तो ये मोमिनों की फितरत में आता है कि मोमिन को मोमिन के लिए जो है ना वो नर्म होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। आप अहदीस पढ़े तो मोमिन की फजीलत के बारे में इतना है कि हुरमतुल मोमिन अफ़ज़लु मिन हुरमतिल काबा, मोमिन का एहतराम काबे के एहतराम से ज्यादा। दुनिया में कहीं रहने वाला मुसलमान काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता है, और मासूम फरमा रहे हैं कि मोमिन का एहतराम काबे के एहतराम से ज्यादा है। आयमा अलैहिस्सलाम का इखलाक ये कि इमाम हसन के सामने शख्स आया, उसने आने के बाद अमीर मोमिनीन को गालियां गलौज सब कुछ दे डाला, और इमाम हसन ने कुछ नहीं कहा, कहा कि भाई तू अगर मुसाफिर है भूखा है तो तुझे खाना खिलाते हैं, अगर तू मुसाफिर है तो तुझे सवारी देते हैं, अगर तू गरीब है तो तुझे पैसे देते हैं। आयमा के इखलाक ये है, और साथ में इमाम हज करने के लिए आए हैं और अली अपनी यकीन मिलने के लिए आए, तो इमाम ने तीन दिन तक उससे मिले नहीं। अली अपनी यकीन इमाम के सहाबी परेशान हो गए कि मौला मुझसे क्यों नहीं मिल रहे, हज करने के बाद फारिग हुआ तो मदीने आए इमाम क्यों मिलने के लिए, इमाम से नहीं मिले। तीसरे दिन उसने कहा कि मौला तीन दिन हो गए मैं आपके मानने वाला हूँ, आप मुझसे मिल क्यों नहीं रहे। इमाम ने अपने गुलाम से कहा जाओ जाकर उससे कह दो कि कूफे में हमारा कूफे में मोमिन तुमसे मिलने आया था, तुमने उससे मिलने से इनकार किया था। इब्राहिम जम्माल अली इब्न यक़ीन से मिलने के लिए आए थे, तो वो उस वक्त हुकूमत के जो कामकाज वजीर थे तो कामकाज कर रहे थे, तुम नहीं मिले वापस कर दिए। तो इमाम ने कहा कि जब तक कि तुम उससे नहीं मिलोगे हम तुमसे नहीं मिलेंगे। तो अली इब्न यक़ीन ने कहा कि मौला मैं तो मदीने में हूँ और वो कूफे में बैठा है, मैं कैसे जाऊँ। तो इमाम ने कहा देखिए मोमिन का एहतराम देखो। इमाम ये भी कह सकते थे ठीक है हम तुमसे मिलते तो तू कूफे में जाना ना तो जाके उससे मिल लेना। मोमिन का एहतराम इतना ज्यादा है कि इमाम मोर्चे के जरिए उसको भेजे। इमाम ने कहा कि तू यहाँ बैठे मदीने में और कूफे में तुझे जाना है, रात जब हो जाए तारीखी हो जाए तो तुम जद्दुलगम की कब्रस्तान में जाना, सुबह जम के ऊँट आएंगे उसको पे बैठ जाना और तुझे लेके पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हुआ जब रात की तारीखी पहुंचा, देखा कि कुछ ऊँट वहाँ पे उस पर ऊँट बैठा और वो ऊँट उसको कूफे ले गए, और उसने इब्राहिम जम्माल से कहा कि तो मुझे माफ कर दे मैं तुझसे नहीं मिला था, इमाम उसे नहीं मिले। उसने कहा मैंने माफ किया। उसने कहा कि अली बिन यक़ीन ने कहा ऐसे नहीं, अपना पाँव मेरी गर्दन पर रखो ताकि जाके मैं इमाम को दिखाऊँ। तो ये डर गए, उसने कहा कि तो वजीर है, उसने कहा कि नहीं नहीं है ये नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं मेरा यही करो। तो उसने जब पाँव गर्दन पर रखा उसने जाके अली बिन यक़ीन ने इमाम को कहा कि बोला मैं उसे हिलियत दे के आगे तब इमाम इससे मिली। इतना एहतराम तो मोमिन का है, तो अगर कसाई मोमिन मिलता है तो बेहतर तो ये है कि कसाई मोमिन से ही जिबा कराया जाए, लेकिन अगर आम मुसलमान कसाई से जिबा करा रहे हैं तो वो अपनी शरीर के हिसाब से जो जिबा कर रहा है, आपके लिए गोश्त जायज है हलाल है, वो जानवर भी हलाल है, वो गोश्त खाना हलाल है, क्योंकि तकरीबन जो हमारी शर्तें हैं जिबा की वो उनकी लिखी है। किबला रुख को भी ले जाते हैं मुस्तहबात है, किबला रुख लेटाना पानी पिलाना और गर्दन को चार को एक चार काटना, ये सब जो कुर्बानी का एहकाम करते हैं उनकी और हमारे सबकी एक ही है। बस एक मसला आता है वो क्या आवाज़ सिस्तानी वालों की याद है कि आवाज़ सिस्तानी के नज़दीक है आयतुल्ला हुई आयतुल्ला हुमैनी मरूमिन के नज़दीक हालत इख्तियारी में आप स्टील की छुरी से जानवर को जिबा नहीं करेंगे, उनके नज़दीक ये था। जैसे मेरे पास लोहे की भी छुरी रखी है स्टील की भी रखी है, तो मैं चाहूँ तो स्टील से भी जिबा कर सकता हूँ बकरे को लोहे से भी, तो आप कोई वगैरह और मैंने कहते थे कि हालत इख्तियारी में बेहतर ये कि लोहे की छुरी से किया जाए, लेकिन अगर हालत इख्तियारी में भी जो है वो स्टील की छुरी से कर दे कुर्बानी तो कोई कुर्बानी से जानवर हराम नहीं हो जाता। लेकिन अगर शीशानी के नजदीक ये कि एहतियात वाजिब ये है कि लोहे की छुरी हो, तो एहतियात वाजिब का मतलब ही यही होता है कि अगर आप चाहें तो इस एहतियात वाजिब पे अमल करें यानी लोहे की छुरी से ज़बह करवाएं, और अगर आप एहतियात वाजिब पे अमल नहीं कर रहे तो अपने बाद वाले जो फल आलम है उनकी तरफ रुजू करें। तो तकरीबन सबके नज़दीक है ना वो कोई फर्क नहीं, चाहे आप लोहे से करें चाहे वो आप स्टील की छुरी से करें। तो अगर आप जिस कसाई से ज़बह करा रहे हैं और वो स्टील की छुरी से भी अगर ज़बह कर रहा है तो आप एहतियात वाजिब में, क्योंकि आप उसको वकालत देते हैं कि मेरी तरफ से तुम जानवर की छुरी जला दो, बेहतर तो ये कि अपना जानवर खुद ज़बह करें। लेकिन बाद लोग जो है वो खुद नहीं देख पाते, मतलब जैसे ही वो ज़रा करती हो वो खुद ही बेहोश हो जाते, बाद लोग इतने हसास होते हैं कि ज़रा तो खून देकर बेहोश हो गए। तो अगर कोई ऐसा है तो अल्लाह ताला बकरे को संभाले या उसको संभाले, तो आमतौर पर यही होता है कि कसाई से कहते हैं कि लो भैया तुम इसको ज़बह करो। इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको नियाबत देते कि मेरी नियाबत में तुम बकरे को कुर्बान करो, तो यानी छुरी वो चला रहा होता है गोया छुरी आप चला रहे होते हैं। तो इसमें ये कि आप रुजू कर लें अगर आगे सिस्तानी के मुकल्लिद हैं तो एहतियात वाजिब में रुजू कर लें कि मतलब है फल आलम जो उसके बाद है उनकी तरफ रुजू करती है और वो तकरीबन सारी इजाज़त देते हैं। तो जहाँ तक है वो सारी तकरीर और जो चीज़ बयान होनी थी वो हो गई, और आखिर में फिर ताकि दोनों के लिए जिलहज का महीना है, तपरुब इलाही का महीना है, मफाती के अंदर बड़े आबादी है खवातीन के, हाँ क्यों नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की जॉब कर रही है शादीशुदा भी नहीं जॉब कर रही है उसके पास पैसे हैं और वो कुर्बानी करना चाहे तो कर सकती है, बीवी के पास अगर आपके पैसे हैं और कुर्बानी करना चाहे तो कर सकती है। हाँ ये नहीं कि शौहर की जिंदगी अधीन कर दी जाएगी, नहीं कुर्बानी तो करनी है ये सही नहीं है। लेकिन अगर बेटी के पास ईदी की जमा हो गई है भाई ईदी की सारी जमा हो गई है और कुर्बानी कर सकती है, कुर्बानी में हिस्सा ले सकती है, मतलब आजकल तो स्लाइडिंग चलती है ना कि मतलब 2,500 रुपये दें आपको गाय में हिस्सा मिल जाएगा, अगर जो गोश्त नहीं मिलता तो हिस्सा ही मिलता है, और किसी के पास 2,500 है वो सवाब लेना चाहे वो 2,500 दे दे सवाब मिल जाएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मगर लड़की है तो उसको बाप की इजाज़त के बगैर तो खैर वो नहीं कर सकती, लेकिन खैर करेगी क्या कर दें नहीं नहीं वो कोई वो पाका खोलने के लिए जो है ना कोई करेजी उजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गया है कि वो करेजी के ऊपर नहीं हो, ऐसा कोई मतलब नहीं, करेजी हो या ना हो मुस्तहब ये है कि नमाज के बाद जब आए तो अपनी ही कुर्बानी के जानवर से यानी वो करे खाने की तरह जो है कुर्बानी के जानवर से करे, लेकिन उसमें गोश्त के कोई मुहैया नहीं है, करेजी खानी है या मतलब ब्रांके गोश्त खाना है या सीने गोश्त खाना है, आपको अपने कुर्बानी के जानवर की बोटी से अपना खाने की इब्तदा करनी है, तो चाहे वो करेजी से करे चाहे किसी से शुरू करे। हाँ अतीते का को अगर कर रहे हैं मतलब बेटी का अतीका नहीं हुआ था और इस कुर्बानी के जानवर में बेटी का अकीका कर रहे हैं तो इस जानवर पे अहकाम सारे वही चलेंगे कि जो अकीके होते हैं, मतलब अकीके जानवर को जो है वो आप हड्डी को नहीं तोड़ सकते, वो भी वाजिब नहीं है, अगर हड्डी को तोड़ भी दे तो कोई उससे अकीका बातिल नहीं हो जाता, लेकिन अगर मुस्ताब ये कि नहीं कर तोड़े और वो शख्स जिसकी किफालत में है जैसे बाप है तो बाप गोश्त नहीं खाएगा माँ नहीं खाएगी, तो ये सब चीज़ें के जो अकीदे के अहकाम हैं वो कुर्बानी वाले जानवर में जिस पर अकीदे की नियत की जा रही है उसमें वो अहकाम चले गए। और कोई सवाल नहीं है तो फिर दुआ कर लीजिए। तो बस मैं ये कह रहा था कि इस ज़िलहज के महीने में जो हज पे नहीं है मफाती जिला के अंदर आमाल किए हुए हैं कि पहले ज़िलहज से लेके जो है वो 10 ज़िलहज तक नमाज है कि जो इसको पढ़ेगा उसका शुमार जो है वो हाजियों में होगा, जितने हज पे जाते हैं इनाम करते हैं इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारे सारे हाजी हों, क्योंकि 5वें इमाम अपने साहबी साथ गए साबित देखे गए मौला आज इस साल कितने हज आए, इमाम ने कहा कि ये मेरी दोनियों के दरमियान देखो जो उसने देखा तो हैरान लगे कि खाने काबा के गेट जो है वो जानवर घूम रहे। तो हज करने वाले भी सारे हाजिर नहीं होते, लेकिन यहाँ जो बैठा है ये अगर खुलूस नियत के साथ सारे आमाल को अंजाम दे रहा है तो फिर मैं माफ करता हूँ। काले पैसे मिलते हैं कि जो हज करने नहीं गया था उसके रफका ने, उसके दोस्तों ने उसको वहाँ पे देखा, और जो हज करने गया था इमाम की निगाहों में वो जानवर के तबाह कर रहा था। तो ये आमाल ये जो है इनको आप अंजाम दें इंशाल्लाह, हज में शुमार होगा, हाजियों में शुमार होगा आपका। और इस दुआ के साथ परवरदिगारा इस माह मुबारक की तमाम फजीलतों को हमें दर करने की ताकत और तौफीक अता फरमा, और ये तमाम बच्चियाँ तशरीफ़ फरमा है इनको इस माह मुबारक में जो गुजरा है जिस तरह मौला का अच्छे अदाली कौन है कि बेहतरीन जौर का इंतखाब किया तुमने परवरदिगार, इन तमाम बच्चों के बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, और इनके वालदैन को इनके फर्ज से सबूत दो सुनने की तौफीक अता फरमा, पालने वाले तमाम हाजरीन को अपनी जमान अता फरमा, और जो मोमिन दुनिया से जा चुके हैं उन्हें आलिम अलैहिस्सलाम के साथ महसूस फरमा, हमारे मरहूमीन की वो गुनाह कबीर और सगीरा को माफ़ फरमा। इस माह मुबारक में एक जो मुबारक महीना है परवरदिगारा हमें भी हमारे भी तमाम गुनाह कबीर और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा इस्लाम को इस्लाम का बोलबाला कर दे परवरदिगारा, बाजी को नेक नाबूद फरमा, पालने वाले तमाम जो दुश्मन आने इस्लाम की नाबूदी के लिए बड़े सारे पैकार है परवरदिगारा, वो हाफिज इस्लाम इमाम ज़माने के दोनों में ताजिल फरमा, और इमाम का जब जहूर तो हमें उनके अंसार आवाज में शामिल फरमा, और मेरी दुआ इमाम ज़माने पर इन शाह जब इमाम का जहूर होगा तो हम उनके अंसार आवाज में शामिल होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलावतुल्लाह अलैहि
وَمُحَمَّدٌ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ